स्वर्गीय मुक्ति मांग लो, साहिज्य मुक्ति का रास्ता मांग लो, सारूप्य मुक्ति का रास्ता मांग लो, सालोक मुक्ति का रास्ता मांग लो, और कुछ मांग लो, लेकिन कैवल्य मुक्ति की बात बोले महाराज ये सब मांग लो तो आपके आशीर्वाद से रास्ता मिल जाएगा, ये वस्तु मिल जाएगी, लेकिन अंत तो गत्व फिर मुझे शासन करना पड़े, किसी माता के गर्भ में लटकना पड़ेगा, किसी पिता के शरीर से पटका जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान भो भगवान हे प्रभु सुनिए, मेरा तो यही प्रार्थना है कि मुझे ऐसा उपदेश दीजिए और मुझे ऐसा प्रसाद दीजिए कि जिस प्रसाद से सारे दुख सदा के लिए निवृत्त हो जाए। टेम्पररी नहीं, दो दिन, दो दस दिन, पच्चीस दिन, पचास दिन, वो तो बच्चा राजी हो जाता है चार पैसे की लॉलीपॉप पर, अथवा जहां से चार रुपए की प्रमोशन हो जाती तो साधारण आदमी खुश हाल हो जाता है कि बाबू तुम्हारी दया थी है, मारू प्रमोशन थे जो आपने पिता बहु हाल छोड़ने पर सब अंदर हम जी क्या बाबलो छे, हमारी दया से प्रमोशन हो गया ये बहुत छोटी सी बात है, हमारी दया से तो यार वो साक्षात्कार हो जाना चाहिए कि जहां पूरा जगत छोटा दिख जाए, ये हमारी दया नहीं है, होगी कोई हमारे पास आने वाले साहेब की दया होगी, कोई दोस्त की दया होगी। नारायण 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 युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आप्नोति नैष्ठिक, कर्म के फल की इच्छा जो छोड़ते हैं उनको नैष्ठिक शांति मिलती है और कर्म का फल का रस भी आता है, और जो लिप्सा रखते हैं आसक्ति रखते हैं उनको कर्म के फल का स्वाद नहीं आता, बोझा ही बोझा मिलता है। अच्छा कर्म फल का त्याग करके जो नैष्ठिक शांति का रास्ता चाहते हैं उनमें पांच गुण अवश्य होने चाहिए, और ये पांच बातें आ जाए तो उनका व्यवहार बंद भी हो जाता है, और प्रारब्ध में तो जितना होगा उतना मिलते ही रहता है, बेईमानी करे तो भी उतना ही टिकेगा उतना ही मिलेगा, ईमानदारी करे तो पहले जरा कठिन सा लगेगा लेकिन उतना मिलेगा, ये मिलेगा तो रसमय मिलेगा आनंदमय मिलेगा। उसका मतलब ये नहीं कि प्रारब्ध पर बैठ जाए हाथ पैर नहीं चलाए, बिना काम किए तो तुम एक क्षण भी नहीं रह सकते हो, फिर चाहे चिंतन का काम करो चाहे शरीर का काम करो, युक्त करो चाहे अयुक्त करो, प्रवृत्ति तो करनी पड़ती है, अयुक्त आदमी अयुक्त प्रवृत्ति करके फसमरता है और युक्त आदमी युक्त प्रवृत्ति करके मुक्त हो जाता है। अयुक्त माना अयोग्यता से किए हुए कर्म, अज्ञान से किए हुए कर्म बंधनकारी हो जाते हैं, जैसे मुट्ठी भर ली अदम पछाड़ करता है, पूछ हिलाता है बंदर, हाथ हिलाता है, सिर पटकता है, चीखता है, एक दो सब कर डालता है, लेकिन उसका इतना करने पर भी बंधन नहीं जाता। और दूसरा है जो आराम से एक एक लेकर युक्ति से खाता और अड़ोसी पड़ोसी को भी बांट लेता, ऐसे ही जो युक्ति युक्त कर्म करता है वो अपने संपर्क में आने वाले को सुख शांति और आनंद के गुड़ के गांगड़े बांटता भी है स्वयं भी खाता है, और जो अयुक्त होता है उन स्वयं खाता है न दूसरे को खाने खिलाने का सौभाग्य प्राप्त करता है और फंस मारता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि में। काशी नरेश राज्य तो करते थे लेकिन थोड़े युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा के रास्ते पर थे, गीता उन्हें बहुत प्यारी थी, गीता का पाठ करते समय इतने तन्मय हो जाते कि गीता के श्लोकों का अर्थ समझते समझते कि उनको बाह्य जगत का आकर्षण विकर्षण खींच नहीं सकता था। काशी नरेश को अपेंडिक्स हो गया, और अपेंडिक्स तो महाराज ऐसा रोग है कि इसमें तो दर्दी को सुनाई जाती है शीशी, उस समय की शीशी क्या थी, अनस्थिया, डॉक्टर ने कहा कि आप अनस्थिया दिया जाएगा बाद में ऑपरेशन होगा, काशी नरेश ने कहा कोई जरूरत नहीं मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, मुझे भगवत गीता दे दो और तुम अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर लो। भगवत गीता पढ़ते रहे, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने के लिए राज बड़ी मुश्किल से डॉक्टर लोग सहमत हुए कि बिना अनस्थिर वो दवाई सुनाने के ऑपरेशन करना, बोले तुम कर लो मुझे पीड़ा होगी, मैं चीखूंगा तब तुम कर लेना कुछ, अगर मैं चीखता नहीं तो तुम अपना काम करते रहना। उनका ऑपरेशन का काम पूरा हो गया, अपेंडिक्स आदि का जो कुछ करना पीटना था वो पूरा हो गया, टांके वहां के आ गए, डॉक्टर ने कहा नरेश काम पूरा हो गया, बोले अच्छा पूरा हो गया, डॉक्टर चकित हुए कि ये क्या नरेश को अभी तक कुछ पीड़ा का असर नहीं। बोले पीड़ा होती शरीर को और मन शरीर से जुड़ता है तब पीड़ा की संवेदना ज्यादा लेता है और मन जब गीता में जुड़ जाता है या किसी बात में जुड़ जाता है तो उस समय सुख दुख का अनुभव नहीं होता कम होता है। जैसे विष को तुम मन को मूर्छित कर देते हो, मन को मूर्छित करके दुख को भूलना एक बात है लेकिन मन को मालिक में मिलाकर दुख से लापरवाह होना ये योग युक्त होना है। कर्म फल त्यक्त्वा जो आदमी है वो सफलता और असफलताओं के बीच भी अपने चित्त में शांति और आनंद का अनुभव कर सकता है। मन और काम ऊंचे केंद्र में आते हैं, चित्त प्रसन्न होता है। अब योग्यता बढ़ती तो संसारी फल पाने के लिए अगर योग्यता को हम खत्म करते हैं तो बंध जाते हैं और उसी योग्यता को बढ़ाते बढ़ाते संसार का कर्म तो ठीक से करते हैं लेकिन संसार की चीजों को पाकर पकड़कर सुखी होने की बेवकूफी छोड़ देते हैं तो फिर वो हमारी योग की सामर्थ्य, ध्यान की सामर्थ्य, सेवा की सामर्थ्य, सत्य स्वरूप ईश्वर को पाने में काम आ जाती है। तो उसमें पांच बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। एक तो अपने व्यवहार में स्वार्थ का त्याग हो भीतर से। जितने अंश में स्वार्थ का त्याग होगा उतने अंश में तुम्हारा चित्त सुयोग्य होता जाएगा। दूसरी बात अहंकार का त्याग। किसी मित्र से मिलते हो या किसी से बात करते हो तो अपना अहम बढ़ाने के लिए नहीं अहंकार मिटाने के लिए। श्री रामचंद्र जी जब बात करते तो सामने वाले को मान देते और आप अमानी रहते हैं। जो व्यवहार में अपना अहंकार दिखाने की कोशिश करता है उसका मान नहीं रहता है, सुनने वाला हाँ हाँ वाह वाह कर लेता है, अंदर से अपने को तोल के रख देता है कोने में। ठीक है, अहंकार निर्मूल जो है वो आदमी जब बात करेगा तो उसकी बात में सार भी होगा और सामने वाले के चित्त में उसकी गहरी असर भी होगी। तो एक पहली बात है कि व्यवहार में स्वार्थ का त्याग, दूसरी बात अहंकार का त्याग और तीसरी बात सत्य का आचरण करें। झूठ कपट बेईमानी से थोड़ी देर के लिए दिखता है लाभ लेकिन अंत तो गत्वा दुख ही दुख होता है, अशांति अशांति होती है। क्योंकि कोई भी चीज तुम पाते तो जिसका कारण अशुद्ध है उस कारण अशुद्ध कारण से शुद्ध कार्य हो नहीं सकता। जैसे तांबे के तारों से भूमि उजाल तांबे की होगी, मिट्टी के लौंदे से मिट्टी के बर्तन बनेंगे और सुवर्ण से सोने के गहने होंगे। ऐसी जो तुम कर्म करते हो तो तुम्हारा कारण अगर अशुद्ध है तो फल तुम्हारे को शुद्ध शांति वाला सुख वाला नहीं मिलेगा। दिखाओ भले थोड़ी देर के लिए लाभ हो जाए लेकिन घर में कोई बीमारी कोई मुसीबत अथवा बुद्धि में कोई उल्टा निर्णय करके तुम्हारे धन को तुम्हारे सत्ता को तुम्हारे अधिकारों को तितर बितर कराने के दिन जल्दी आ जाते हैं। इसीलिए आप स्वार्थ त्याग और अहंकार त्याग ये दो बात आ जाए तो सत्य आचरण करने पर दृष्टि रखें। जितना हो सके मन से कर्म से वचन से अपने चित्त में अपने अंतःकरण में अपने व्यवहार में कपट न आए तो आपका अंतःकरण थोड़े ही दिन में पावन हो जाएगा और आप पर लोग भरोसा करने लगेंगे और आपके संपर्क में आकर आपकी तो उन्नति होती है। आपके संपर्क में आने वालों की भी उन्नति होगी और सत्य आचरण से भगवान जल्दी रिझते हैं, भक्ति ज्ञान योग में बरकत आती है। और गीता में एक जगह आया है कि जो भक्ति का प्रचार करता है गीता के ज्ञान का प्रचार करता है वो मुझे प्राणों से भी प्यारा है, आप भगवान के अति प्रिय हो जाएंगे। जो भगवत चर्चा सुनाते हैं वो भगवान के अति निकटवर्ती हो जाते हैं, उनका अंतःकरण जल्दी भगवत रस से भगवत भाव से पावन हो जाता है। तुलसीदास ने कहा जिनी हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र एहि भवन समाना। जिन्होंने अपने कानों के द्वारा हरि कथा नहीं सुनी तो फिर उनके कान है भोरिंग के भवन जैसे, शांत के गर्व जैसे उनके कान माने जाए। जिनकी जीवा से हरिनाम नहीं उचारा जाए उनकी जीवा दादुर की जीवा के समान है। तो तुम्हारा सत्याचरण और भगवत चर्चा भगवत चिंतन से तुम्हारी जीव पवित्र होगी और सत्याचरण से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध और पावन होगा। तो शुद्ध वातावरण में से शुद्ध और अशुद्ध सब चीज को आप खींच सकते। जैसे गुलाब अपना कुछ ले लेता है और मोतिया अपना ले लेता है गंध पृथ्वी में से और चंपा अपनी गंध ले लेता है, ऐसे तुम्हारा अंतःकरण जैसा होगा विशाल वातावरण में से वैसी चीज तुम्हारी ओर आकर्षित होकर आएगी।
तुम्हारा अंतःकरण में सच्चाई और स्नेह है तो अंतःकरण में जो सत्पुरुष है और स्नेह से पूर्ण है परमात्मा को पाए हुए पुरुषों के आंदोलन तुम्हारे अंतःकरण को और उन्नत करेंगे। और तुम्हारे जीवन में अगर पाप ताप दगा बेईमानी है तो आसुरी आंदोलन तुम्हारे अंतःकरण में सेट होते जाएंगे। तो तुम जिसको आमंत्रित जैसा व्यवहार करते हो वैसा ही वातावरण तुम्हारे अंतःकरण में आमंत्रित होता जाता है। जैसे आदमी पानी पीता है निकालता पीता निकालता थोड़ी असावधानी रहती है तो पानी में जो क्षार पथरी हो जाती कुछ स्टोरेज हो जाता है और ठीक से गाड़ी चलती है तो पथरी आदि नहीं होती। ऐसे तुम्हारे कर्म करने की गति ठीक होती है तो कर्मों के बंधन की पथरी नहीं बनती है और अगर ठीक व्यवहार नहीं होती तो कर्मों के बंधन की पथरी बन जाती जो पीड़ा देती है। ये पथरी तो ऑपरेशन करके निकाली जाती लेकिन वो पथरी के ऑपरेशन के लिए 84 लाख बार जन्मना और मरना पड़ता है। इसलिए अपने अल्प जीवन में आदमी ऐसा काम करे कि 84 लाख जन्मों के बंधन कट जाए और अल्प जीवन में ऐसा काम न करे कि हजारों हजारों जन्मों तक भटकता रहे दुखी होता रहे। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जिसको युक्त कर्म फल त्यक्त्वा बनना है उसको 5 बातें ध्यान में लेनी चाहिए। एक तो उत्तम व्यवहार स्वार्थ त्याग का, दूसरा अहंकार मेहमान को खिलाओ पिलाओ किसी से मिलो लेकिन ये भाई साहब काम में आएंगे ये साहब काम में आएंगे इस भाव से मत मिलो। इस भाव से मिलोगे तो फिर वो मिलने में वो काम में आएंगे उतना नहीं आएंगे जितना निस्वार्थ भाव से मिलोगे तो काम में आएंगे। तो स्वार्थ रखकर जब तुम धीरे धीरे करते हो तो अंदर से छोटे हो जाते हो और तुम्हारा फायदा दूसरे स्वार्थ लोग उठा लेते हैं। तुम जब निस्वार्थ होकर मिलते और व्यवहार करते हो तो वो सामने वाले के हृदय में जो हृदयेश्वर बैठा है वो तुम्हारे लिए ठीक उसको मदद करने को प्रेरित कर देगा। तो ये साहब मदद में आएंगे ये साहब काम में आएंगे फलाना काम में आएगा ठीना काम में आएगा। इस प्रकार का आकर्षण से अंतर पर मलिन करके जो व्यवहार किया जाता है वो व्यवहार का फल मधुर नहीं होता है। व्यवहार करो उत्तम ढंग से स्वार्थ त्याग करके स्नेह से। दूसरी बात अहंकार का त्याग, तीसरी बात सत्य आचरण और चौथी बात है तुम्हारे व्यवहार में विनय हो। विनय युक्त जो व्यवहार है वो शत्रु को भी अपना बना लेता है तो मित्र को अपना बनाने में देर कितनी और मित्रों का मित्र परमात्मा उसको अपना बनाने में देर कितनी भैया। तो अपने व्यवहार में विनय हो, वाणी में विनय हो, व्यवहार में विनय हो। और पांचवी बात तुम्हारे जीवन में प्रेम हो। जहाँ प्रेम होता है वहाँ परिश्रम का ख्याल नहीं होता। जैसे बच्चे अपने भाई को प्यार करती है नन्हे मुन्ने 8 साल की बच्ची अपने भाई को उठाकर 4 मंजिल तक ऊपर ले जाती। अरे 10 मिनट पहले तो बोलती थी कि किलो का 1 लीटर दूध लाना मेरे से नहीं उठेगा, ये 6-7 किलो का भाई को लेकर ऊपर जाती। बोले नहीं नहीं इसमें कोई वजन नहीं क्योंकि भैया में प्रेम है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ बोझा नहीं लगता और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ थोड़ा सा काम भी बोझा हो जाता है। तो मोह से बच्चों को पालना मोह से परिवार को पालना पति की सेवा करना या पत्नी को खुश रखना स्वार्थ से या मोह से तो पति पत्नी एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा को प्रसन्न करने के नाते पति पति की सेवा करना और परमात्मा को प्रसन्न करने के खातिर पत्नी का पोषण करना और बच्चों में जो परमात्मा है उसकी सेवा के खातिर, ऐसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे फिर हमारा सेवा करेंगे हम बूढ़े होंगे बच्चे हमको कमा के खिलाएंगे। इस भाव से जो बच्चों को पोषते हैं तो उनके बच्चे बड़े होकर हमको ऐसा दुख देते हैं कि बूढ़े ताकते ही रह जाते कि अपनी अपनी मेहनत करे ना तो बैरू नहीं छूटो थे। जो प्रेम परमात्मा से करना चाहिए था जो कर्म ईश्वर के नाते करने चाहिए थे वो कर्म तुमने स्वार्थ के नाते किए इसलिए बुढ़ापे में रोना पड़ता है। जो भरोसा परमेश्वर पर रखना चाहिए था वो भरोसा अगर पुत्रों पर रखा तो वो भरोसा जरूर गड़बड़ कर देगा। तो तुम भरोसा तो भगवान पे रखो और कर्म संसार में करो। कर्म करने में 5 बातों की सावधानी रखो। एक तो उत्तम व्यवहार कनिष्ठ नहीं पापाचार नहीं अच्छा व्यवहार सुंदर पवित्र व्यवहार। दूसरा उस व्यवहार में स्वार्थ का त्याग। सेल्समैन भी अच्छी मीठी बातें करता है लेकिन स्वार्थ होता है। और ये जरूरी नहीं कि सेल्समैन मीठी बातें करता है तो सदा के लिए सुखी हो जाता है। नहीं सदा के लिए सेल्समैन ही करो मीठी बातें करो लेकिन उसमें स्वार्थ न रखो तो सेल्समैन ही तो चलेगी। एक दुकान है गोधरा बस स्टैंड के सामने, वो साधक यहाँ आता है, छोटी सी दुकान और स्टार्ट की उसने तो 1000-2000 के माल से, और उसका व्यवहार ऐसा कि बस गुजारे भर का मिल जाए, स्वार्थ नहीं। 1 रुपए 6 में रोहित मिल की लग्जरी टॉप में ले जाता था, 1.5 रुपए देता था। तो वहां पहले तो ऐसी आदत थी, तुम्हें 1.5 रुपए को तो के 12 में आलू, तुम्हें 6 रुपया का तो के 4 रुपया आलू, तो सब दुकानदार 3 गुना भाव बताते थे। वही टॉप लीन बताते थे 2.5 रुपया, 2.5 रुपये वाले खेच तान के 2.25 रुपये बिकती, और ये जब 1.5 रुपये बोलते थे तो ग्राहक चले जाते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि मेरे को स्वार्थ त्याग करके जीवन दिव्य करना है, 1.5 रुपया बोले ग्राहक लेवे नहीं, घूम फिर के 2.5, 2.75 सुन के फिर आकर 1.5 रुपये ले जाओ, फिर दूसरी बार कभी भाव पूछे नहीं। क्या तो भगवान जेवा मानस, वो छोटी सी दुकान में से 30 तो छोटे मोटे लड़कों को छोटी मोटी धंधे रोजगारी की लाइन मिल गई, और एक बड़ी दुकान है और दयाल वस्त्र भंडार होलसेल रिटेल चल रहा है। तो स्वार्थ त्यागने शुरुआत में आदमी ऐसा मूर्ख जैसा लगता है, भोला भाला लगता है, जो स्वार्थी कपटी लोगों की जो पूरी बाजार में कपटी लोग भरे हैं सब जगह, उसमें एक सज्जन और स्वार्थ त्यागी आदमी दुकान लेके बैठे और पैसा इतना नहीं, एक बार तो पैसा भरना था और 2000 रुपए था नहीं, वकरा हुआ नहीं, इज्जत जाती है, तो अनजान आदमी आकर सुबह सुबह 2500 दे गए। कहाँ से आए बोले, हम कहीं से भी आए, तुम ले लो, हमको जरूरत पड़ेगी तब ले जाएंगे, खुदा खैर करे बंदा लहर करे, और जब जरूरत पड़ी तब लेने को आए उसके पहले। हालांकि वो था तो यवन, अरे भाई तो हिंदू था, फिर भी भगवान न जाने किस वक्त किसके द्वारा तुम्हारी किश्ती को चलाने के लिए सहयोग दे दे, दिला दे। तो तुम्हारे जब रुख बदलते हैं तो निजारे भी बदलते हैं, निजारे बदले तो नजरें बदली तो निजारे बदलेंगे, किस्ती रुख बदलेगी तो किनारे बदलेंगे। तो हमारी जो स्वार्थमय बुद्धि वृत्ति है उसमें निस्वार्थता आ जाए, किस्ती रुख बदले तो निजारे बदल जाएंगे। जो दुख पीड़ा मुसीबत अशांति प्रॉब्लम और टेंशन में हम मरे जा रहे हैं, वो सुख शांति निर्भीकता आनंद और यहाँ भी सुखी परलोक में भी सुखी ये मार्ग मिल जाएगा। तो ये 5 बातें फिर से कहता हूँ, उत्तम व्यवहार, दूसरी बात 5 बातों में उत्तम व्यवहार स्वार्थ त्याग, दूसरी बात अहंता का त्याग, तीसरी बात सत्य आचरण, चौथी बात विनय और 5वीं बात प्रेम। तुलसीदास जी ने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़न सम नहीं अधम आई, परहित बस जिनके मन माई, तिनको जग कछु दुर्लभ नाही। जिनके चित्त में दूसरों की भलाई छुपी है और जो दूसरों की भलाई के लिए सब काम करते हैं, उनके लिए जगत में दुर्लभ कुछ भी नहीं होता है। ऐहिक चीजें भी दुर्लभ नहीं होती और भगवान भी उनके लिए दुर्लभ नहीं होता है। पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर ने कहा, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। वो सतगुरु तत्व आत्मदेव आपको मिल सकता है चालू व्यवहार में, जैसे तुलाधार को मिला। तो चालू व्यवहार में ये 5 बातें आ जाए तो अंतःकरण शुद्ध होगा, शुद्ध अंतःकरण वाला बैठेगा तो ध्यान जल्दी लगेगा, ज्ञान की बात जल्दी समझ में आएगी, महापुरुषों को पहचानने की बुद्धि मिल जाएगी, महापुरुषों के उपदेश को झेलने की बुद्धि मिल जाएगी। बुद्ध के साथ आनंद भी रहता था और सुभूति भी रहता था, लेकिन सुभूति को बुद्ध इतने सारे मिल गए हैं कि सुभूति बुद्ध के विदाय पर भी सुभूति को भय नहीं है, खतरा नहीं है, क्योंकि बुद्ध को ऐसा पा लिया कि बुद्ध कभी जा नहीं सकते। लेकिन आनंद ने ऐसा नहीं पाया कि बुद्ध कभी जा नहीं सकते, आनंद ने बाहर बाहर से पाया था और सुभूति ने बुद्ध को बाहर और भीतर दोनों ढंग से अच्छी ढंग से पाया था। तो आप भी परमात्मा को बाहर बार से तो मंदिर में पाते हो, बाहर बार से तो आरती के वक्त भगवान के निकट होते हो, लेकिन भीतर से भगवान के निकट अगर एक बार हो जाओ तो फिर वियोग नहीं होता है। बाहर से 1000 बार भगवान के साथ मिलो, शाकुनी मिलता था श्री कृष्ण को, दुर्योधन मिलता था श्री कृष्ण को, और ग्वाला कहके पुकारता था, राम जी को सूतनखा भी मिली थी, तो मैंने अर्ज किया था कि ये जो शाश्वत शांति है, नैष्ठिकम शांति है, वो भगवत दर्शन तो पाप आत्माओं को भी हो जाता है अनजाने में, जैसे शाकुनी को भगवत दर्शन हुआ था, दुर्योधन को हुआ था, लेकिन अपने व्यवहार को, ये पांच बातों से अपने व्यवहार को सजाया नहीं तो वैसे के वैसे रह गए। अर्जुन ने पांच बातों से व्यवहार को अनजाने में भी, पांच बातें जिनके व्यवहार में थी उन्होंने भगवान के दर्शन से बहुत कुछ पा लिया। शबरी में प्रेम था भगवान के दीदार से, शबरी ने ऐसी यात्रा की कि सारी यात्राओं का फल मिल गया। मतंग ऋषि के आश्रम में रहने वाले वो अबला भीलन, उसके व्यवहार में निष्कामता थी, उसके व्यवहार में प्रेम था, उसके व्यवहार में विनय था। राम जी एक बार मिले, सुरपंखा को भी राम जी मिले और शबरी को भी राम जी मिले। बताओ सुरपंखा ने कुछ नहीं पाया, नाक कान कटाकर नकपट्टी हो गई, और शबरी ने ऐसा पाया कि साधु संतों की जीवा पर शबरी का नाम आदर से लिया जाता है। सरोवर काठे शबरी बैठी, सरोवर काठे ओली भीला बैठी, ने धरे रामनु ध्यान, राम राम रटता शबरी बैठा। शुद्ध होता है उसको सत्संग में रुचि होती है, जिसका पुण्य जोर होता है व्यवहार शुद्ध होता है। व्यवहार में पांच बातें होती है, वो सत्संग के बिना रह नहीं सकेगा, सत्पुरुषों का आदर किए बिना रहा नहीं जाएगा उसमें। जैसे सती सावित्री, बाप ने तो क्रुद्ध होकर एक भील के साथ ब्याह दी और भील वास में रहती थी झोपड़ी में। देवऋषि नारद पसार हुए तो कई भीलाएं बोलते थे, बाहो आयो बाहो आयो, ऐसा करके मश्करी करते थे। लेकिन सावित्री तो आदर से नारद जी को प्रणाम करते, और नारद जी पूछते कि देवी तेरा व्यवहार तो कुछ बड़ घराने की बुद्धिमान महिला जैसा है। बातचीत करते हुए पता चला कि पिता ने गुस्से में लकड़ हार के साथ शादी करा दी। नारद जी ने देखा लकड़ हार कौन है कि सत्यवान, और सावित्री को मंत्र दिया, भीलवास में रहने वाले और लकड़ी करके गुजारा करने वाला हूँ, बचपन से भीलों के वातावरण में पलने वाला सत्यवान, समय पाकर ऐसा जीवन चमका के सती सावित्री होकर अभी सुप्रसिद्ध है। तो आपके व्यवहार से ही आपका भविष्य बनता है, और व्यवहार करने के पहले मशीन को काम दिया जाता है, मनुष्य को ज्ञान दिया जाता है। व्यवहार के पहले अगर गीता का ज्ञान मिल जाए और फिर व्यवहार में लगे तो बेड़ा पार हो जाता है। अर्जुन को गीता का ज्ञान मिला और बाद में युद्ध में लगा है तो युद्ध जैसे घोर कर्म में भी अर्जुन सफल हुआ है और आदरणीय हो गया। नहीं तो जो युद्ध करे, लड़ाई करे, अपने कुटुंबियों को, बड़ों बड़ों को जिनकी गोद में खेला है, जिनसे सीखा है पढ़ा है, उनकी हत्या करनी पड़ती है। लेकिन अर्जुन विवश है, धर्म युद्ध करना पड़ता है, फल आसक्ति नहीं है, त्यक्त्वा कर्म फल को छोड़ दिया है, जो होगा निष्काम भाव से युद्ध। निष्काम भाव से जब युद्ध हो सकता है तो निष्काम भाव से तुम्हारी नौकरी क्यों नहीं हो सकती? कि दादाजी नौकरी करेंगे तो पगार तो लेंगे, पगार तो जरूर लो, लेकिन ये पगार लेकर मेरे को मजा नहीं लेना है, पगार लेकर ये जो मेरे इर्द गिर्द भगवान ने जवाबदारी सौंपी है उसको निभाना। जिनको खिलाने वो बड़े होकर मेरे को खिलाए, जिनको पोषना वो मेरे को पोषे, इस स्वार्थ से नहीं। और कभी कभी पड़ोसी का बच्चा अपने बच्चे से जरा ज्यादा जरूरतमंद है तो वहां भी हाथ चला जाएगा सेवा के लिए। हृदय में जो आनंद आएगा, शांति आएगी, वो कुटुंबियों के मोह माया से आक्रांत जीवन से वो आनंद नहीं आएगा जितना हृदय विशाल करके आनंद पा सकोगे। जितना जितना व्यवहार में स्वार्थ त्याग होगा, हृदय की विशालता होगी, उतना उतना अंतःकरण शुद्ध होगा और परमात्मा रस से पूर्ण होने लगेगा। एक पुरुषोत्तम नाम के भगवान के भक्त हो गए, हकीकत में वो पुरुषोत्तम दास जी साधारण कुटुंब में जन्मे थे और बचपन में माँ बाप विदा हो गए थे। गंगा तट पर गांव देवपुरी, उसमें पुरुषोत्तम दास जी महाराज एक बहुत उच्च कोटि के संत हो गए। उनका बाल्यकाल तो महाराज ऐसा गुजरा कि थोड़े 3-4 वर्ष की उम्र में पिता चले गए, 6 वर्ष में माँ चले गई। अब दीदी ने उनको पाला पोषा। दीदी भगवान की भक्त थी और सत्संग में जाया करती थी, तो उस बालक पुरुषोत्तम को सत्संग में ले गए। और सत्संग का रंग बचपन में जब लग जाता है ना तो बड़ी गहरी असर करता है। तो दीदी ने उनको राम नाम में प्रीति सिखा दी और व्यवहार की शुद्धि, इन 5 बातों के छोटे मोटे संस्कार डाल दिए। आज वो पुरुषोत्तम बच्चे पुरुषोत्तम में तो भक्ति का ऐसा कुछ रंग जमा कि 5-6 वर्ष की उम्र में माँ बाप तो चले गए, लेकिन ऐसे माँ बाप का शरण मिल गया जो कभी न जाए। तो उनको नवरस फीके हो गए। नवरस कौन से है कि श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभीष रस, अद्भुत रस और संसारिक शांति का रस। ये सारे 9 के 9 रस उनके लिए फीके हो गए। षडरस नवरस दोनों फीके हो गए। षडरस कौन से होते हैं कि कटु, तीक्ष्ण, मधुर, काषाय, अम्ल और लवण। इस प्रकार के 9 और 6, 15 के 15 जगत के रस फीके हो गए। ऐसा उनके चित्त में राम रस प्रकट होने लगा और इस प्रकार राम रस में वो जीते थे। धंधा व्यवहार जो कुछ छोटा मोटा आता था काम तो करते थे, लेकिन चित्त राम रस से भरा रहता था। 12 वर्ष इस प्रकार उनका चित्त रहा महाराज। फिर तो वो देहाध्यास से पार हो गए, बाहर का काम धंधा छूट गया। जो आत्म तृप्त होते हैं तस्य कार्यम न विद्यते, आत्मरति रेवच। जिसको आत्मरति होती है, आत्म प्रीति होती है, उसके लिए तो संसार का कार्य कर संसार का बोझा अपने आप छूट जाता है। ऐसे ही उस संत के जीवन में संसार जीवन जीने वाले पुरुषोत्तम दास महाराज हो गए। वो दीदी के संग से गंगा तट पर उस गांव में लोगों को जब पता चला कि इनका मधुर व्यवहार और उनका सानिध्य से इतना सुख शांति मिलता है, तो लोग धीरे धीरे उनके पास कथा श्रवण को आते थे। रामायण लेकर कभी बैठ गए, कभी कोई संत महापुरुष का पुस्तक लेकर बैठ गए। तो पुस्तक या ग्रंथ तो होता था धार्मिक, लेकिन धर्म अंदर से प्रकट होता है। धर्म अंदर से जब प्रकट होता है ना तो उसमें बड़ी मधुरता होती है। धर्म क्या है कि जिससे अपना और दूसरे का इस लोक और परलोक में श्रेय हो वही धर्म है। अपना और दूसरों का इस लोक और परलोक में कल्याण हो वह धर्म है। ऐसा धर्म आचरण पुरुषोत्तम दास के व्यवहार में और वाणी में था। धीरे धीरे लोग उनके 5, 25 से 50, 100, 200 ऐसे बढ़ते गए। देर सवेर वो पुरुषोत्तम दास महाराज एक संत के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। पुरुषोत्तम दास महाराज 5 वर्ष तक लोक संपर्क में रहे और फिर अंत में देखा कि ये प्राण पखेर उड़ने वाले। उस समय उन्होंने प्राणायाम करके परमात्मा ध्यान किया और उनकी ताल में से प्राण पखेर ईश्वर तत्व में समा गए। उनका नश्वर शरीर संसार में जैसे विधि होती ऐसे हो गया। शाश्वत उनका अंतवाहक शरीर परमात्मा में मिल गया। कहने का तात्पर्य है कि जिसके जीवन में ये 5 बातें आ जाती है अथवा जिसके जीवन में भगवत रस आने लगता है तो ये 5 बातें अपने आप उनके व्यवहार से टपकने लगती है। वो आदमी संसार का व्यवहार करते हुए भी परम पद को पा लेता है। उत्तम मनुष्य वह है कि उत्तम व्यवहार और उत्तम विचार और उत्तम संग करके जीवन का निर्वाह करते हैं। उत्तम मनुष्य का काम है कि कोई काम करते हैं तो आगे पीछे विचार करके हाथ में लेते हैं और फिर प्राण जाए लेकिन उस कर्म को छोड़ते नहीं जब तक उस कर्म में पूर्णता न आए। मध्यम आदमी ऐसे होते कि अच्छा काम लेते तो हैं, थोड़ा विघ्न आ जाए तो ध्यान भजन छोड़ दिया, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आए तो सत्संग वत्संग छोड़ दिया। और कनिष्ठ अधम आदमी ऐसे होते हैं कि अच्छे काम के तरफ चलते ही नहीं और चलते हैं तो दिखावे भर को चलते हैं। तो अधम आदमी इस रास्ते चलता नहीं, चलता है तो दिखावे भर का। मध्यम आदमी चलता है और विघ्न आता है तो भाग खड़ा होता है, लेकिन उत्तम आदमी हजार हजार विघ्न आ जाए फिर भी नहीं छोड़ता, अंत तो गतवा उत्तम पद को पा लेता है। तो उत्तम में उत्तम पद है शाश्वत शांति, नैष्ठिक शांति। तो तुम जो कुछ करो तो काम करने के पहले आराम होता है, काम करने के बाद भी आराम होता है, तो काम ऐसा करो कि तुम्हारे चित्त में राम का आराम प्रकट होने लग जाए। चित्त को जांचो, अपने चित्त में अशांति तो नहीं आ रही है, भय तो नहीं आ रहा है, क्रोध तो नहीं आ रहा है, और जब क्रोध भय अशांति आए तो देख लेना कहीं न कहीं गड़बड़ है, कहीं न कहीं स्वार्थ है। हरी कथा मीठी नहीं लगती, सत्संग मीठा नहीं लगता है, तो कहीं न कहीं स्वार्थ खटपट कर रहा है, कहीं न कहीं पुण्यों की कमी है, इसलिए कुदाकुद करा रहे। तो अपने मन को अपने बुद्धि को जांचते रहेंगे तो जल्दी स्वच्छ होंगे और संसार में और ईश्वर के रास्ते दोनों रास्ते आदमी सफल होता है। कभी कभी कोई आदमी दोनों हाथ से सिर खुजलाते हैं, दोनों हाथ से सिर नहीं खुजलाना चाहिए, और झूठे हाथ से तो सिर को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुद्धि मंद होती है। झूठे हाथ से बच्चे भी सिर को हाथ में लगाए ऐसी सीख देनी चाहिए उनको। नारायण 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 नारायण।